17 अक्टूबर बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, ब्रेग्जिट को लेकर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच नए समझौते पर सहमति बनी।
अब इस नए मसौदे पर यूरोपीय यूनियन की जो काउंसिल है यानी 28 देशों के 28 मुखिया वो अपनी सहमति देंगे और आखिर में ब्रितानी संसद मोहर लगाएगी।
पाकिस्तान ने भारत की ओर से पानी रोकने की चेतावनी पर दी कड़ी प्रतिक्रिया।
पानी रोकने की कोई कोशिश उकसावे की कार्रवाई मानी जाएगी और पाकिस्तान के पास इसका जवाब देने का अधिकार होगा।
दिल्ली में दोहराया जाएगा ऑड इवन फॉर्मूला, लेकिन क्या इससे वाकई प्रदूषण कम होगा?
पिछली बार जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था तो जितने भी आंकड़े निकले उनसे पता लगा कि गाड़ियां भी 50% कम नहीं होती।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। यूरोपीय संघ और ब्रिटिश नेताओं के बीच एक नया ब्रेक्सिट समझौता हुआ है जिसमें उत्तरी आयरलैंड बैकस्टॉप के मुद्दे पर सहमति बन गई है। यानी उत्तरी आयरलैंड अब भी यूरोपीय संघ के कुछ नियम कानूनों से बंधा होगा। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जियां क्लाउड जंकर ने इसे एक जायज और संतुलित समझौता कहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे शानदार समझौता बताया है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के सम्मेलन से वापस रवाना होने से पहले उन्होंने ब्रिटिश संसद से इसे शनिवार को मंजूरी देने की अपील की। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तुर्की की राजधानी अंकारा में हैं। माना जा रहा है कि वो सीरियाई कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने के लिए तुर्की के नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। दोनों अमरीकी मंत्री तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर तुर्की ने यह हमला नहीं रोका तो वो पाबंदियां लगाकर तुर्की की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। उधर ट्रंप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अमरीकी सुरक्षा बलों को सीरियाई सीमा से वापस बुलाकर अपने कुर्द सहयोगियों को धोखा दिया है। खबर है कि उन्होंने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति एर्दोगान को चिट्ठी लिखकर सीरिया में कुर्द लड़ाकों पर हमला न करने की अपील की थी, लेकिन तुर्की के नेता ने उस चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंक दिया। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कवुसोग्लू ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि तुर्की पाबंदियों से नहीं डरता।
ये एक जायज सुरक्षा चिंता है और हम अपने सहयोगियों से अपेक्षा करते हैं कि वो इसे समझें और इसका सम्मान करें, और अगर वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल जारी रखते हैं या धमकी देते हैं तो हम इससे नहीं डरने वाले। हम जानते हैं कि अगर हमने आज सीमा पार के उन आतंकवादियों को ख़त्म नहीं किया तो आगे ये काम और मुश्किल होगा। ये थे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कवुसोग्लू के शब्द। उत्तरी पूर्वी सीरिया में मौजूद कुर्द स्वास्थ्य सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते शुरू हुए तुर्की के सैन्य अभियान में अब तक 218 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी निगरानी संस्थाओं ने हताहत नागरिकों की संख्या कुछ कम बताई है। इससे पहले खबरें आई थीं कि कुर्द लड़ाकों और तुर्की के सुरक्षा बलों की लड़ाई की चपेट में सीरिया का रस अल ऐन शहर आया है जहाँ काफ़ी बम भी गिरे हैं। सीमा के पास मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक कुर्द सेनाएं सुरंगों के रक्षात्मक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए तुर्की की सेना को जवाब दे रही हैं। स्पेन में कैटालोनिया की क्षेत्रीय सरकार के नेता ने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत करते हुए एक स्वतंत्र जनमत संग्रह की मांग की है। क्षेत्रीय सदन को संबोधित करते हुए क्वेमतोरा ने साल के अंत तक कैटलन गणराज्य का प्रस्ताव आमंत्रित किया है। उन्होंने दो साल पहले बार्सिलोना और दूसरे शहरों में हुए हिंसक प्रदर्शनों की आलोचना की। इन्हीं प्रदर्शनों के बाद 9 अलगाववादी नेताओं को जेल भेज दिया गया था, लेकिन स्पेन के गृहमंत्री ने कहा है कि क्वेमतोरा और दूसरे कैटलन नेताओं को अपनी आलोचनाओं में स्पष्टता दर्शानी चाहिए। सोमवार से शुरू हुए गतिरोध के बाद अब तक सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए हैं। क्वेमतोरा ने कहा, सच यह है कि अपने भविष्य को तय करने के सवाल पर यह सदन हर बार बहस और चर्चा करेगा, और कोई अदालत कैटालोनिया की सरकार के प्रमुख को ऐसा करने से नहीं रोक सकती। हम अपने इस अधिकार से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले। ये थे कैटालोनिया की क्षेत्रीय सरकार के नेता क्वेमतोरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता सांसद एलिजा कमिंस का बाल्टीमोर के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वो 68 वर्ष के थे। वो उस हाउस ओवरसाइट कमेटी के प्रमुख भी थे जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर जांच कर रही थी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक फुटबॉल मैच में काफी आक्रामकता और धक्का मुक्की देखी गई। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दोनों देशों के बीच ये मैच खेला गया। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा, दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। कई दिनों तक चली गहन बातचीत के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा है कि उनके बीच एक नए ब्रेग्जिट समझौते के लिए सहमति बन गई है, लेकिन इसके लिए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की संसद, दोनों ही संसदों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए वात्सल्य राय से।
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक ट्वीट कर इस डील की घोषणा की है। जॉनसन ने ट्वीट में लिखा, हमने एक नई डील की है जिसमें नियंत्रण फिर हमारे पास होगा। अब संसद को शनिवार को ब्रेग्जिट पर मुहर लगानी होगी ताकि हम देश के बाकी मुद्दों पर ध्यान दे सकें। दोनों पक्ष ब्रेग्जिट समझौते के मसौदे पर कई दिन से बातचीत कर रहे थे। अब जिस समझौते पर रजामंदी बनी है उसे ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की संसदों में पास कराना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि वो सरकार का समर्थन इसी शर्त पर करेगी कि इस डील पर एक जनमत संग्रह कराया जाए। पार्टी के नेता टोनी लॉयड्स ने कहा, कोई भी डील हो उसे पहले जनता के दरबार में जाना होगा ताकि लोग कह सकें कि ये अच्छी डील है या खराब। लेबर पार्टी के नेता टोनी लॉयड्स के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन की संसद अब इस डील पर अपनी मुहर लगा देगी। मैक्रों ने कहा,
दिस इज योर प्राइम मिनिस्टर टू डिलीवर नाउ अ वोट एट योर पार्लियामेंट, सो आई
अब ये आपके प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इसे संसद में पास करवाएं। मुझे लगता है कि अब आशावान होने का समय है। इस मुद्दे पर आखिर में हुई बातचीत की वजह से हम समझौते पर पहुंच पाए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। उधर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जियां क्लॉड हुनकर ने इसे एक संतुलित समझौता बताया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क को लिखे एक पत्र में हुनकर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि ब्रिटेन के संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और भविष्य में दोनों के बीच पार्टनरशिप के लिए बातचीत शुरू की जाए।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसल्स में है जहां यूरोपीय परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत यूरोप के अन्य देशों के नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और यहीं से ये खबर निकल कर आई कि ब्रेग्जिट को लेकर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एक नई डील पर सहमति बन गई है। ब्रसल्स में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य।
ब्रसल्स में ये यूरोपीय यूनियन की काउंसिल की बिल्डिंग है। इसके बाहर 28 झंडे जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्य देशों को चिन्हित करते हैं। यहाँ पर एक अहम समिट चल रही है जिसमें सभी 28 देशों के मुखिया, कहीं के प्राइम मिनिस्टर्स जैसे जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल समेत सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सब यहाँ मिले हैं। ये इनकी एक साल में 4 बार होने वाली समिट है, लेकिन ये समिट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से निकलने की यानी ब्रेक्सिट की एक डील के मसौदे पर बातचीत हुई है। एक सहमति बनी है कि किस तरीके से, किन कायदों के तहत ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग होगा। आप ये जानते हैं कि इससे पहले भी इस तरह की एक डील पर बातचीत हुई थी और सहमति बनी थी, तब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे थी। उस डील को लेकर जब वो वापस ब्रिटेन की संसद में गई तो उस संसद ने उस पर मोहर नहीं लगाई। 3 बार वोट होने के बावजूद आखिरकार टेरेसा मे को अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देना पड़ा और नए प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन हुई, बहुत हेक्टिक बातचीत रही। कल देर रात 2 बजे तक यहाँ पर बातचीत चल रही थी और आखिरकार बोरिस जॉनसन की तरफ से जो नेगोशिएटर थे और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो नेगोशिएटर थे मिशेल बार्नियर, उन लोगों ने बातचीत की और मिशेल बार्नियर ने प्रेस वार्ता कर ये साफ किया कि फिर एक नए समझौते पर तय हो गए हैं वो लोग, उनकी सहमति बन गई है। अब इस नए मसौदे पर यूरोपीय यूनियन की जो काउंसिल है यानी 28 देशों के 28 मुखिया वो अपनी सहमति देंगे। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट जिसमें 751 सदस्य हैं, ये सभी सदस्य चुनकर यानी जनता के वोटों से चुनकर 28 देशों से आते हैं, वो मोहर लगाएंगे और आखिर में ब्रितानी संसद मोहर लगाएगी। ये तीनों पड़ाव पार करने के बाद ही ब्रेक्सिट की ये दूसरी डील लागू हो सकेगी। दिव्या आर, बीबीसी, ब्रसल्स।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरियाणा की एक चुनावी रैली में भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की बात कही थी। पाकिस्तान ने आज इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। bbchindi.com की खबर सुनिए नवीन नेगी से।
पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा है कि समझौते के तहत तीन नदियों के पानी पर उसका खास अधिकार है और पानी रोकने की कोई कोशिश उकसावे की कार्रवाई मानी जाएगी और पाकिस्तान के पास इसका जवाब देने का अधिकार होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हरियाणा की एक चुनावी रैली में भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की बात कही थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने प्रधानमंत्री मोदी के उसी बयान का जिक्र करते हुए कहा, सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के पास तीन पश्चिमी नदियों के पानी पर खास अधिकार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारतीय नेतृत्व की ओर से ऐसा बयान आना इस तथ्य का एक और स्पष्ट उदाहरण है कि मोदी सरकार भारत को एक गैर जिम्मेदार आक्रामक राज्य बनाने पर तुली है, जिसका मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय वादों को लेकर कोई सम्मान नहीं है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयानों से दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। दुनिया को ये समझना चाहिए कि मोदी की अतिवादी सरकार दक्षिण एशिया और दुनिया की शांति के लिए साफ तौर पर खतरा है। मोहम्मद फैसल ने भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि भारत प्रशासित कश्मीर के 80 लाख लोग बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत इस मामले में अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अयोध्या विवाद पर पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया और कहा कि ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और जो मुसलमानों की वहां ख्वाहिश है उनकी मांगों के मुताबिक हम चाहेंगे कि फैसला हो।
पाकिस्तान ने भारत की ओर से पानी रोकने की चेतावनी पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, जानकारी दे रहे थे नवीन नेगी। भारत प्रशासित कश्मीर में संदिग्ध चरमपंथियों ने बीते 3 दिन में 3 लोगों की हत्या की है और ये तीनों ही गैर कश्मीरी हैं। मजदूरी और कारोबार से जुड़े इन लोगों की हत्या को जानकार कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था के लिए खराब मानते हैं। ज्यादा जानकारी श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट में।
बीते 3 दिनों में दक्षिणी कश्मीर के शुपियां और पुलवामा में 3 गैर कश्मीरियों की संदिग्ध चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। पहली घटना सोमवार को शुपियां के शिरमाल इलाके में पेश आई, जहां संदिग्ध चरमपंथियों ने राजस्थान के रहने वाले शरीफ खान नामी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी ट्रक को जला दिया गया। खान इलाके में सेब लोड करने गए थे। एक दिन बाद यानी बुधवार को संदिग्ध चरमपंथियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी, जो ईंट के भट्टे में मजदूरी करता था। मारे गए मजदूर की पहचान ऐसे सागर के तौर पर हुई है, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। पुलवामा में मारे गए मजदूर के हवाले से SP पुलवामा चंदन कोहली ने बताया कि चरमपंथियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।
यहाँ पे एक ब्रिक किल में बच्चे में काम करता था पुलवामा में, तो ये हैज बीन शॉट डेड बाय टेररिस्ट्स।
बुधवार देर रात एक दूसरी घटना में पंजाब के सेब व्यापारी चरणजीत सिंह और उनके साथी संजय कुमार पर हमला किया गया। चरणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इन सभी घटनाओं के लिए चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है। इन घटनाओं से पहले संदिग्ध चरमपंथियों ने श्रीनगर में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि सोपोर में 3 सेब के व्यापारियों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। एक दूसरी घटना में त्राल में आम 2 नागरिकों को अगवा करने के बाद उनकी संदिग्ध चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। घाटी में इस तरह की घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों ने भी सख्त शब्दों में निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता रविंदर राणा,
कोई भी आतंकी हरकत हो उसके हम खिलाफ।
बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर कहते हैं,
अब मिलिटेंट स्पेशन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से यहाँ वो लोग बाहर जाए और गलत मैसेज बाहर जाए, ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन के बगैर कुछ नहीं।
गौरतलब है कि बीते 5 अगस्त को भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में तनाव बरकरार है और कश्मीर के सभी कारोबारी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। कश्मीर फ्रूट कम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने बताया कि हमें नहीं मालूम कि ये कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है।
अब हमें ये कंफर्म तो है नहीं कहां ये जो शुपियन में वाक्य हुआ तो ये किसने किया। हम लोग तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है।
तो आप इसको कंडम करते हैं, इन तरह के एक्ट्स को?
बिल्कुल बिल्कुल।
विश्लेषक कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर एक हमला है। सीनियर पत्रकार बशीर मंजर,
देखिए खौफ तो डेफिनेटली जब ऐसी कोई किलिंग हलाकत होती है तो खौफ तो डेफिनेटली पैदा होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखने की जरूरत है कि हॉर्टिकल्चर जो है या एप्पल इंडस्ट्री जो है ये कश्मीर की मईशत इकोनॉमी की बैकबोन है, और जो भी ये अटैक्स हुए हैं पिछले दिनों से सोपोर से लेके परसों शुपियां में जो ट्रक ड्राइवर मारा गया, ये सब हॉर्टिकल्चर पे अटैक के तौर पे मैं देखता हूँ।
एक दूसरे विश्लेषक और पत्रकार हारून ऋषि कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों को बचाए।
देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना ये एक्चुअली स्टेट का काम है।
उधर डीसी शुपियां मोहम्मद यासीन ने बताया कि शुपियां में ड्राइवर्स को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए काम जारी है। हमने ट्रकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का अमल शुरू किया है। इन ट्रकों को मंडी और दूसरी सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बीती रात से सिलसिला शुरू किया गया है। ये थे डीसी शुपियां के शब्द। गौरतलब है कि 5 अगस्त के बाद चरमपंथियों ने कई ऐसे पोस्टर जारी किए जिनमें आम लोगों से कारोबार बंद करने के लिए कहा गया था। हालांकि बीबीसी इन पोस्टरों के असली होने की तस्दीक नहीं कर सकता है। चरमपंथियों ने इन हत्याओं के लिए अभी तक न ही जिम्मेदारी कबूल की है और न ही इन हत्याओं में शामिल होने से इनकार किया है। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
भारत की राजधानी दिल्ली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही हर साल बढ़ने वाले प्रदूषण के मद्देनज़र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाहनों के लिए एक बार फिर ऑड इवन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में दिवाली के बाद 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू की जाएगी। इसमें होता यह है कि सम विषम नंबरों वाली गाड़ियाँ एक एक दिन के अंतर से सड़कों पर निकलती हैं और इसे ना मानने वालों को जुर्माना देना होता है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कितना कारगर होगा ये उपाय, समझने के लिए मैंने बात की आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर दिनेश मोहन से, जिन्होंने इस विषय पर काफी शोध किया है।
कोई नतीजा, ऐसा साइंटिफिक नतीजा नहीं निकला जिससे कह सकें कि पोल्यूशन कम हुई। इसके सीधे सीधे कारण हैं जो आसानी से समझ सकते हैं कि जितनी भी स्टडीज अभी तक या दिल्ली सरकार ने कराई हो या किसी और ने करी हो जो साइंटिफिक कम्युनिटी में मानी जाती हैं, उनमें से कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें कि गाड़ियों का जो रोल है PM2.5 में पोल्यूशन पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में, वो किसी भी स्टडी में 7-10% से ज्यादा नहीं निकलता सारा मिला के। तो अगर आप ऑड इवन करें इसका मतलब थ्योरेटिकली गाड़ियां जो हैं दैट इज मोटर कार आधी होंगी, और बिल्कुल आधी हो जाएं तो इसका ज्यादा से ज्यादा 3%, 4% या 5% फर्क पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा हिसाब है ना। अगर सिर्फ 3% कम होगा पोल्यूशन, उसको तो आप नाप भी नहीं सकते किसी तरह से। कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है कि किसी दिन 3% पोल्यूशन कम हो या 4% कम हो या 5% कम हो, आप कह सके किस वजह से हुआ है, ये तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना कम है, क्योंकि वेरिएशन हर रोज होते हैं। और पिछली बार जब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था तो जितने भी आंकड़े निकले उनसे पता लगा कि गाड़ियां भी 50% कम नहीं होती, क्योंकि उसमें भी छूट है कई लोगों के लिए, कई लोग और गड़बड़ करते हैं, तो करीब 30% कम होती हैं, 50% नहीं। इसका मतलब आपका 3-4% भी प्रदूषण कम नहीं होगा, वो 2-3%, 1% होगा। दूसरा, जब मोटर कार का चलना कम होता है तो पिछली बार देखा गया था कि मोटरसाइकिल, बस, टैक्सी, थ्री व्हीलर सब बढ़ जाते हैं, तो उनके बढ़ने की वजह से कितना और प्रदूषण पैदा होता है वो भी नहीं मालूम किसी को। तो जहां तक हम लोगों का ख्याल है, इस तरीके से पोल्यूशन में कोई फर्क पड़ने का लॉजिक ही नहीं है।
दिनेश मोहन जी, क्या दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ जाता है और फिर ये फौरी उपाय किए जाते हैं, क्या कोई एक स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन, स्थायी समाधान इस समस्या का हो नहीं सकता? यदि हो सकता है तो वो क्या समाधान हो सकता है?
समाधान यह है कि जो आपके सॉल्यूशन हरेक शहर में काम करेंगे वो दिल्ली में करिए। अगर और शहर में वो नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन कम हो। अगर आपका कोई खेत जलाए जा रहे हैं तो उनको पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल अपने नाक के सामने। और इवन से कुछ नहीं होगा, दिल्ली सेंट्रिक सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा। उसके आगे बात करनी है कि अगले 5 साल में कैसे कम हो या 10 साल में, अगले साल कम नहीं हो सकता। दिल्ली में सब जगह वो बना रहे हैं ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवेज और लाइट फ्री एक्सप्रेसवेज और एलिवेटेड रोड्स, जिनमें आपकी स्पीड 100 से ज्यादा होगी, 90 से ज्यादा होगी, तो उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ेगा।
आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर दिनेश मोहन। 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरा महाराष्ट्र चुनावी रैलियों और सभाओं से गूंज रहा है। इस बार बीजेपी ने जिन बड़े नेताओं को मैदान में नहीं उतारा उनमें एक प्रमुख नाम एकनाथ खड़से का है, जो टिकट नहीं दिए जाने से खासे नाराज हैं। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से से बात की बीबीसी संवाददाता अभिजीत कांबले ने।
पार्टी ने मुझे एक 5 साल के लिए और एक बार देना चाहिए था टिकट, ऐसा मेरा मेरी मांग भी थी और मेरी अपेक्षा भी थी, इच्छा भी थी और वैसे मेरा हक भी था। कंटिन्यूसली 6 बार मैं यहाँ से चुन के आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पक्की और मजबूत मैंने बनाई है और कुछ प्रोजेक्ट जो है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरे करने के लिए मुझे 5 साल की ज़रूरत थी। पर अभी उन्होंने ठीक है मुझे नहीं टिकट दिया तो मेरी बेटी को टिकट दिया। सरकार ने मुझे बताया कि ठीक है आपके जो है जो आपके कामकाज है आपकी बेटी आगे बढ़ेगी।
लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है?
मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है पर पार्टी को लगता है कि हमने उसको अन्याय हुआ, अगर ऐसा भी लगता होगा तो आगे चल के न्याय करेंगे, हो सकता है हम राह देखते हैं क्या चल के। और अन्याय न्याय तो अपनी परिभाषा है और दूसरों को क्या लगता है मालूम नहीं है, पर मुझे खुद ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को 40-42 साल से हमने खड़ा किया, जिस पार्टी की पहचान नहीं थी, जिस पार्टी में बहुत बड़ी तकलीफों के साथ हमने पत्थर खाए, मिट्टी खाए, कई बार जेल में जाके आए और ये पार्टी जो बनिया बमनों की बोली जाती थी उसमें से बहुजन चेहरा लाने की कोशिश की, अब इसके बावजूद एक बार तो हमारा हक था कि भाई हम लोग को दो। हालांकि पार्टी ने कुछ कम किया ऐसा नहीं है, पार्टी ने बहुत सारा दे दिया है, पर ठीक है पार्टी का निर्णय मान्य करके चलेंगे।
क्या आपको आगे चल के कुछ आश्वासन मिला है या जैसे चर्चा है कि आपको राज्यपाल पद दिया जाएगा उसके बारे में आप क्या कहें?
नहीं ऐसा कोई आश्वासन मुझे नहीं मिला, पर एक बार मुझे बताया गया था कि भाई राज्यपाल जी के लिए आपको विचार हो सकता है या विचार हम लोग कर रहे हैं और इसलिए 2 महीने पहले की बात है, इसलिए उसी समय मुझे पता चल गया कि टिकट लो मुझे मिलने वाला नहीं है। सर मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा भी था तो बोले नई जिम्मेदारी देने वाले ये मेरा निर्णय ऊपर का निर्णय, तो ठीक है मतलब पार्टी का निर्णय जो पार्टी का निर्णय होगा मान्य करके मैं चलूँगा।
आप हमेशा से ओपनली हर चीज़ के बारे में बोलते आए हैं, असेंबली के अंदर भी बाहर भी, पार्टी के कभी कभी लाइन के छोड़ के भी आप बोलते आए हैं, क्या आपको लगता है यही वजह है जिसकी वजह से आपका टिकट कटाया है?
देखो पार्टी की लाइन को छोड़कर मैंने कभी भी बात नहीं की, पार्टी के चौकट के बाहर में कभी गया नहीं, ऐसा जाता था तो अभी तक तो कई कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। मुझे आदत नहीं है किसी के पैर चाटने की, किसी के हांजी हांजी करने की, मैं एक स्पष्ट वक्ता हूँ जिसके परिणाम आज मैं भोग रहा हूँ।
महाराष्ट्र में बीजेपी नेता एकनाथ खड़से से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता अभिजीत कांबले। आज बृहस्पतिवार है और हर बृहस्पतिवार बारी होती है श्रोताओं की चिट्ठियों की।
आपकी राय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे और मेरे साथ हैं
नमस्कार राजेश प्रियदर्शी की ओर से।
तो राजेश जी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये हमारे पास पोस्टकार्ड आया है तरंग श्रीवास्तव का, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का, पोस्ट सातनपुरवा जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है वैसे तो
जी।
और ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और हम सबका इसमें नाम है और सबकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बस इतना कहना चाहते हैं। ये
हमारे आलोचक भी हैं, कई बार ये बहुत शिकायत भी करते हैं और बहुत विस्तार से हमें बताते हैं कि कार्यक्रम में क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं लगा। बहुत शुक्रिया पत्र लिखने के लिए।
और ये चिट्ठी आई है विजय कुमार त्रिपाठी की उत्तराखंड अल्मोड़ा से। लिखते हैं कि आज के दौर में भी मैं रेडियो सुनता हूँ, क्योंकि इनकी पत्नी जब रेडियो की बैटरी लेने गई तो दुकानदार ने कहा कि आज कौन सुनता है रेडियो, तो ये बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस और साथ में ये कहना चाहते हैं कि रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत 1971 के युद्ध का वर्णन सटीक रहा, दिलनवाज पाशा द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश की बाढ़ की जानकारी की प्रस्तुति अच्छी थी।
बहुत शुक्रिया हमें पत्र लिखने के लिए। ये विजय जी इन्होंने कहाँ से लिखा है पत्र?
अल्मोड़ा से।
बहुत धन्यवाद।
और ये है हमारे शिकायती श्रोता शब्बीर खन्ना रियाद सऊदी अरब से। कहते हैं कि मुझे व्यक्तिगत ये एहसास होता है कि बीबीसी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर के 1 घंटे की सर्विस की गई, लेकिन बीबीसी ने सही तरीके से अपना फर्ज अदा नहीं किया।
इन्होंने क्या आगे लिखा है कि हमने ऐसा क्या किया जिससे उनको ये लगा कि हमने अपना फर्ज पूरा नहीं किया?
हाँ ये लिखते हैं कि 21 तारीख को बीबीसी इंडिया बोल सुना, फिर एक बार श्री राजेश जोशी का प्रोग्राम पर कब्जा करना, उसके बाद हर समय प्रोग्राम के दौरान अधिकतर श्रोताओं पर ये दबाव बनाना कि भारत सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है और कोई हताहत नहीं हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि श्री राजेश भारत सरकार के पी पब्लिक वो हैं।
और ये बहुत आवश्यक है कि हम कश्मीर की भी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं और साथ में भारत सरकार क्या कह रही है, क्योंकि वो भी उसमें एक पक्ष है, वो उसका क्या कहना है वो भी बताएं और हर तरह की राय के लिए जगह हो, लेकिन साथ में यह है कि कार्यक्रम संतुलित हो, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, तो वो यही करने की कोशिश कर रहे थे।
और ये हैं अमित कुमार ठाकुर, मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा, बिहार से। लिखते हैं कि पिछले कुछ माह पूर्व बीबीसी की संध्याकालीन सभा एक घंटा की अर्ध दिए जाने से श्रोताओं में खुशी और जोश की उमंग थी, लेकिन उसके बाद आपने आधे घंटे का कर दिया और हम फिर से मायूस हो गए।
ये हमने बताया ही था कि ये अस्थायी बदलाव है और कश्मीर में जैसी परिस्थितियाँ थी और सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही थी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद होने की वजह से, जैसे जैसे हालात में सुधार हुआ, जैसे जैसे वहां से जानकारियां आने लगी, हमें ये महसूस हुआ कि फ़िलहाल हम उसको आधे घंटे के कार्यक्रम पर वापस लौटें।
और मेल आया है जुंजाराम गोदारा सारला बाड़मेर राजस्थान से। लिखते हैं कि महाराष्ट्र के आदिवासियों की रिपोर्ट सुनी, एक बार पश्चिमी राजस्थान की अनेक समस्याओं पर भी आप रिपोर्ट पेश करें तो बड़ा अच्छा होगा।
बहुत शुक्रिया आपका। देश के हर कोने से हमें हमेशा ऐसी चिट्ठियां ईमेल मिलती हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि हम उनके इलाके के बारे में समाचार प्रकाशित करें, और ये एक बहुत जायज़ और ज़रूरी बात है, लेकिन बीबीसी के पास जो समय की और संसाधन की और राष्ट्रीय प्रसारक होने की वजह से एक जो सीमा है उसमें बहुत मुश्किल होता है कि हम हर इलाके को पूरी तरह से और अच्छी तरह से उसके समाचार लोगों तक पहुंचा सकें, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका हुआ तो हम ज़रूर पश्चिमी राजस्थान की खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, अगर ऐसी कोई बात हुई जो कि हमें लगता है कि हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी खबर पहुंचाएं।
और कुछ कहना चाहते हैं आकाशराज दानापुर पटना बिहार से कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से प्रस्तुत सलमान रावी की रिपोर्ट बहुत ही प्रभावशाली लगी और ये हमें सोचने पर विवश करती है कि उस जगह का विकास कैसे संभव होगा जहां के आला अधिकारी वहां अपनी मौजूदगी को खुद के लिए सजा मानते हैं। और वसत साहब की डायरी लोकतंत्र में जनता के प्रति सत्ता के रवैये और विपक्ष की भूमिका पर जनता को कड़ी नज़र बनाकर अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जोर देती है, चाहे सरकार जहाँ कहीं की भी हो, किसी की भी हो। ये उनकी अब तक की खास प्रस्तुतियों में से एक थी।
बिल्कुल, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए। आपकी राय में फिलहाल इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए, चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें। आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और श्रोताओं की चिट्ठियों के बाद इंदु पांडे खेल समाचारों लेकर स्टूडियो में आ चुकी हैं।
खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं हॉकी से। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया को 5-1 से हरा के 9वें सुल्तान ऑफ जोहर कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत की तरफ से शीलानंद लाकड़ा ने 2 जबकि दिलप्रीत सिंह ने और गुरसाहिबजीत सिंह, मनदीप मोर ने 1-1 गोल दागा। भारत को दूसरे क्वार्टर फाइनल में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन गुरसाहिबजीत ने गोल में तब्दील करने में वो नाकाम रहे और भारत अपने अंतिम राउंड रोबिन मैच में कल ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगा। अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो भारतीय शटलर साइना नेहवाल डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट में कल पहले दौर में जापान की सायाका ताकाहाशी से हार गई हैं। विश्व में 8वें नंबर की खिलाड़ी साइना महिला एकल में 37 मिनट तक चले मैच को गंवा बैठी और बहुत कुछ ये कहा जा रहा है कि जो उनकी फिटनेस है वो आड़े आ रही है और वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। और समीर वर्मा हालांकि पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे हैं, उन्होंने जापान के केंटा सुनियामा को शिकस्त दी है।
इंदु पांडे से खेल समाचारों के बाद वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार पुनः कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ और ब्रिटिश नेताओं के बीच एक नया ब्रेक्सिट समझौता हुआ है जिसमें उत्तरी आयरलैंड बैकस्टॉप के मुद्दे पर सहमति बन गई है। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तुर्की की राजधानी अंकारा में हैं। माना जा रहा है कि वो सीरियाई कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने के लिए तुर्की के नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। उत्तर पूर्वी सीरिया में मौजूद कुर्द स्वास्थ्य सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते शुरू हुए तुर्की के सैन्य अभियान में अब तक 218 आम नागरिक मारे गए हैं। स्पेन में कैटालोनिया की क्षेत्रीय सरकार के एक नेता ने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत करते हुए स्वतंत्र जनमत संग्रह की मांग की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समयानुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।